नमस्कार। आज हम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य के एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्बोधन पर चर्चा कर रहे हैं
जी,
जिसका शीर्षक है साधना में श्रद्धा की महत्ता और वातावरण की उपयोगिता।
हाँ, ये शीर्षक अपने आप में ही मतलब विषय को साफ कर देता है।
बिल्कुल। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे कि साधना की सफलता के लिए ये दोनों चीजें, श्रद्धा और वातावरण, कैसे और क्यों जरूरी है।
जी, पूज्य गुरुदेव इसमें बहुत सरलता से समझाते हैं कि देखिए, कुछ काम बाहरी मदद से हो जाते हैं और कुछ हमें खुद ही करने पड़ते हैं।
हाँ, उन्होंने बड़े अच्छे उदाहरण दिए हैं। जैसे मान लीजिए कोई बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिला दे।
हाँ,
पर चबाना और पचाना वो तो भाई हमें खुद ही करना होगा।
सही बात है। या फिर विवाह का उदाहरण ले, माता पिता अच्छी योग्य पत्नी ढूंढ ला सकते हैं।
हाँ बिल्कुल।
लेकिन उस रिश्ते का सम्मान करना, उसे निभाना, वो जिम्मेदारी तो उस पुरुष की अपनी है।
तो इसी तरह साधना में भी है बाहरी मदद और अपना प्रयास।
बिल्कुल। बाहरी मदद हो गया वातावरण और अपना प्रयास हो गई श्रद्धा। पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि इसीलिए शांति कुंज जैसे स्थान बनाए गए।
अच्छा।
ताकि एक विशेष आध्यात्मिक माहौल मिले।
हाँ, एक ऐसा माहौल, एक ऐसा वाइब्रेशन जो शायद घर पर रोजमर्रा की जिंदगी में ना मिल पाए।
ये वातावरण का प्रभाव, ये कितना गहरा हो सकता है। गुरुदेव ने कुछ उदाहरण दिए इसके।
हाँ, कई उदाहरण है। जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण है कि गुरु वशिष्ठ भगवान राम और उनके भाइयों को शिक्षा देने के लिए अयोध्या से दूर क्यों ले गए।
हाँ, हिमालय ले गए थे।
जी, हिमालय, क्योंकि अयोध्या का जो राजसी ठाट बाट वाला माहौल था वो आध्यात्मिक शिक्षा के लिए उतना ठीक नहीं था।
अच्छा।
जबकि हिमालय वो तो हजारों साल से ऋषियों की तपस्थली रहा है, वहाँ की हवा में कण कण में वो संस्कार थे।
ये तो आध्यात्मिक बात हुई, दुनियावी स्तर पर भी ऐसा होता है क्या?
अरे बिल्कुल होता है। आप देखिए, मैसूर का चंदन क्यों मशहूर है?
अपनी खुशबू के लिए।
और नागपुर के संतरे?
स्वाद के लिए। ये क्या है, ये उस जगह की मिट्टी, पानी, हवा, यानी वहाँ के वातावरण का ही तो असर है।
सही बात है। शारीरिक बनावट पर भी तो असर पड़ता है ना।
हाँ, देखिए ना, बंगाल के लोगों की गणन और सीमा प्रांत के पुरुषों की गणन में फर्क दिखता है।
हाँ, दिखता है।
और वो श्रवण कुमार वाली कहानी भी तो है।
कौन सी?
कि एक खास जगह से गुजरते हुए वहाँ के बुरे संस्कारों के असर से उनके मन में क्षण भर को माता पिता के लिए गलत विचार आ गया था।
अरे हाँ, लेकिन जैसे ही वो उस जगह से आगे बढ़े विचार बदल गया।
बिल्कुल। ये क्या दिखाता है, स्थान का, भूमि के संस्कारों का प्रभाव।
तो इसी नजरिए से देखें तो शांति कुंज की विशेषता और साफ हो जाती है।
हिमालय के दरवाजे पर।
हाँ।
और गंगा जी का किनारा,
सप्तऋषियों की तपस्थली।
जी, और फिर वहाँ जो निरंतर यज्ञ चलता है, गायत्री मंत्र का जाप होता है, वो अखंड दीपक जो हमेशा जलता रहता है,
और खुद पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की तपश्चर्या,
ये सब मिलकर उस जगह को एक बहुत ही शक्तिशाली, एक प्राणवान आध्यात्मिक केंद्र बनाते हैं। ऐसा वातावरण साधना में बहुत मदद करता है।
लेकिन ये तो सिक्के का एक पहलू हुआ है ना।
हाँ बिल्कुल।
क्योंकि गुरुदेव ये भी तो साफ कहते हैं कि सिर्फ अच्छे वातावरण में चले जाने से ही सब कुछ नहीं हो जाता।
एकदम सही, ये बहुत जरूरी बात है। अगर साधक के अंदर लगन नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो फिर
क्या,
तो फिर वो वातावरण भी कुछ खास मदद नहीं कर पाएगा। जैसे गंगा किनारे कितनी ही मल्लाह रहते हैं, दिन भर गंगा में नाव चलाते हैं।
हाँ, रहते हैं।
पर अगर उनमें वो भाव नहीं है, वो श्रद्धा नहीं है, तो क्या उन्हें गंगा का आध्यात्मिक लाभ मिलता है?
नहीं मिलता।
बात तो सही है, श्रद्धा की अपनी शक्ति है फिर।
अरे श्रद्धा की शक्ति तो अपार है।
आप मीराबाई को देखिए।
हाँ, उनका तो जीवन ही श्रद्धा का प्रमाण है।
पत्थर की मूर्ति में उनको साक्षात कृष्ण दिखते थे, उन्हीं कृष्ण ने तो उनके लिए विष को अमृत बना दिया था।
और एकलव्य मिट्टी के द्रोणाचार्य बनाकर।
जी, मिट्टी की मूर्ति में गुरु को देखकर उसी श्रद्धा के बल पर वो इतने बड़े धनुर्धर बन गए।
रामकृष्ण परमहंस का भी तो ऐसा ही कुछ है ना।
हाँ, उनकी श्रद्धा तो इतनी तीव्र थी कि पत्थर की काली माँ की मूर्ति जीवंत हो उठी। रानी रासमणि ने खुद देवी को भोग लगाते देखा था।
अद्भुत। और कबीर जी का?
कबीर जी ने तो बस रास्ते चलते स्वामी रामानंद के मुंह से निकले राम राम को ही श्रद्धा से गुरु मंत्र मान लिया, और कहाँ पहुँच गए।
तो मतलब गुरुदेव का संदेश ये है कि शांति कुंज जैसा सिद्ध वातावरण तो उन्होंने बना दिया।
जी, उन्होंने अपना काम कर दिया।
लेकिन उसका पूरा फायदा उठाने के लिए हमें अपनी श्रद्धा को जगाना होगा, उसे जिंदा रखना होगा।
बिल्कुल। बिना श्रद्धा के वो पवित्र भूमि भी बस एक बिल्डिंग जैसी लगेगी, कुछ खास अनुभव नहीं होगा।
तो निष्कर्ष क्या निकलता है इस पूरी चर्चा का?
निष्कर्ष बहुत साफ है, साधना की गाड़ी के दो पहिए हैं, एक है सही बाहरी वातावरण जैसे शांति कुंज, और दूसरा है हमारी अपनी गहरी अटूट श्रद्धा।
दोनों का होना जरूरी है।
हाँ, दोनों का तालमेल जरूरी है। गुरुदेव ने वातावरण तैयार कर दिया, वो एक उपजाऊ जमीन की तरह है। अब साधक को उसमें श्रद्धा का बीज डालना है और उसे लगन से सींचना है,
तभी साधना का फल मिलेगा। बाहरी साधन और अपनी आंतरिक निष्ठा दोनों मिलकर ही आध्यात्मिक प्रगति कराते हैं।
सही कहा, श्रद्धा हो तो पत्थर में भगवान मिल जाते हैं, और सही वातावरण का भी तभी असली लाभ मिलता है।
यहाँ पर एक विचार आता है मन में।
जी कहिए।
कि मान लीजिए किसी को हमेशा अनुकूल बाहरी वातावरण ना मिले, परिस्थितियाँ वैसी ना हो।
हाँ, हो सकता है।
तो क्या वो व्यक्ति सिर्फ अपनी श्रद्धा के बल पर, अपनी अटूट लगन के बल पर आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ सकता है?
ये बहुत गहरा प्रश्न है, और अगर हाँ तो फिर इस श्रद्धा को, इस आंतरिक शक्ति को जगाया कैसे जाए, इसे पोषित कैसे किया जाए?
ये सोचने वाली बात है। चलिए इसी विचार के साथ आज की चर्चा को विराम देते हैं। ओम शांति।
ओम शांति।